उत्तर रामचरित्र में प्रधान रस, उत्तर रामचरित्र में प्रधान रस कौन है? करुण अथवा करुण विप्रलम्ब श्रृंगार। इस विषय में विद्वान मंडली एक मत नहीं है। कुछ लोग इसमें करुण विप्रलम्ब नामक श्रृंगार रस मानते हैं, तो कुछ लोग यह कहते हैं कि इसका मुख्य अर्थ अर्थात अंगी रस है। करुण दोनों पक्षों की ओर से कई तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। शास्त्र दोनों पक्षों का समर्थन करते हैं, किंतु यथार्थ तो यह है कि महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित में करुण रस का सागर नहीं महासागर लहरा रहा है। कोटि प्रयत्न करने पर भी यह तथ्य छिपाया नहीं जा सकता है कि इस नाटक का अंगी रस है करुण। इतना ही नहीं, महाकवि भवभूति तो एक रसवादी है, उनकी दृष्टि से एक ही रस है करुण रस। श्रृंगार आदि रस तो इसी रस के भेद हैं, विकार हैं, पोषक हैं। उनकी दृष्टि में करुण रस अन्य रसों का आधारभूत है। वे यह मानते हैं कि करुण रस रूपांतरित होकर श्रृंगार वीर आदि रसों के रूप में परिणत होता है। सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस की ही है। करुण रस प्रकृति है और श्रृंगार आदि अन्य रस विकृति है। इसी बात को वे डिमडिम घोष के साथ यह इस प्रकार कहते हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथक् वेव श्रेयते विवर्तान् आवर्त बुद्ध्योद उत्तरवंगम भयान् विकारानभ्यो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। उत्तरम चेत महाकवि भवभूति उत्तरम चेत में करुण रस की सत्ता को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं। राम के अंदर करुण रस का प्रवाह है। राम भीतर ही भीतर पुटपाट के सदृश घूटते रहते हैं और उनकी यह व्यथा बहुत ही घनी है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणोरसः तृतीय अंक का प्रारंभ करुणोरसः से और समापन एकोरसः करुण एव से होता है। इन दोनों ही स्थलों से कवि ने स्पष्ट निर्देश किया है कि उस नाटक का प्रधान रस है करुण। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण क राम। राम इस नाटक का धीरोदात नायक है। जीवन में मर्यादा का अतिशय पालन करने के कारण राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनमें शक्ति शील तथा सौंदर्य आदि गुणों की पराकाष्ठा है। वे त्याग तथा तपस्या की साक्षात मूर्ति हैं। राम इतने प्रबल पितृभक्त हैं कि पिता के सत्य का पालन करने के लिए मिले हुए राज्य का प्रसन्नता से प्रत्याग कर देते हैं, वनवास को अंगीकार करते हैं। वे एक आदर्श राजा हैं। प्रजानुरंजन को वे अपना पवित्र कर्तव्य एवं पावन धन मानते हैं। प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने भौतिक सुखों को तिलांजलि देने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। उनकी यह उद्घोषणा है कि लोकाराधन के लिए मुझे सब कुछ, यहाँ तक कि जानकी को भी छोड़ने में कुछ भी कष्ट न होगा। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। राम का राज्य एक आदर्श राज्य है। उनका जीवन त्रैकालिक जन के लिए आदर्श जीवन है। अपने जीवन और आदर्श में अपवाद का लगाना उन्हें सही नहीं है। जीवन में आदर्श बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी उनके लिए अकिंचित कर है। यही कारण है कि जब वे अपनी प्राणाधिक प्रिया सीता के बारे में तुच्छ प्रजा के द्वारा भी लांछन की बात सुनते हैं, तो अपने हृदय पर पत्थर रख कर कठोर गर्भा सीता का परित्याग करके अपने आप को दुख के सागर में जीवन भर के लिए निक्षिप्त कर देते हैं। यद्यपि सीता की पवित्रता के बारे में राम को परमाणु भर भी संदेह न था, किंतु अब फिर भी उन्होंने प्रजारंजन के लिए उनका परित्याग कर दिया था। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में राम को एक आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया है। एक पत्नी व्रती के रूप में राम सारे विश्व में अपना सानी नहीं रखते हैं। सीता के निर्वासन के अनंतर विश्व की कोई भी सुंदरी पति के रूप में उनका वर्णन करने के लिए अपने आपको परम सौभाग्यवती समझती, अपने आप को धन्य धन्य मानती, परंतु राम ने ऐसी किसी घटना के लिए कोई अवसर ही नहीं आने दिया। अश्वमेघ यज्ञ में कर्म कांड की पूर्ति के लिए उन्होंने सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा को अपने वाम भाग में स्थान देकर विश्व भर को चकित कर भर ही नहीं किया, अपितु सीता के मन में दुख के शल्य को सर्वदा के लिए निकाल दिया। यही कारण है कि सीता जब उक्त प्रसंग को सुनती है तो बरवस उनके मुख से निकल पड़ता है, आर्य पुत्र इदानीमसी तम अहो दुखातामिदानीम चिमे परित्याग शल्यम आर्य पुत्रेण। सीता परित्याग के दुनिर्वार दोष को राम के मध्य मरने वाले लोगों के लिए यह स्थल अवश्य ही पठनीय और माननीय है। संसार में एक पत्नी व्रत का ऐसा अद्भुत उदाहरण दीपक लेकर अन्वेषण करने पर भी नहीं मिलेगा। सीता राम के घर की लक्ष्मी थी, वह उनके नेत्रों की अमृत शाला का थी, जीवन की थी, हृदय थी। ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु थी जो राम के लिए सीता न थी। यम गेहे लक्ष्मी यम अमृतम वर्ति नयनो रसावश्या स्पर्शो वपुषी बहु सलचंदन रस अयम बाहु कंठे शिशिरम स्त्रीणो मौक्तिक कसर किमस्या न प्रेयो यदि परम सहस्तु विरह। ऐसी प्राण प्रिया सीता को भी प्रजारंजन के नाम पर घोर वन में निर्वासित कर अपने जीवन के समस्त सुखों को बलि की वेदी पर न्योछावर करने का काम केवल राम ही कर सकते हैं। विधाता की सृष्टि में और कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। तृतीय अंक में वासंती निरपराध सीता को निर्वासित करने के लिए राम की कठोर आलोचना करती हुई कहती है, अई कठोर यशः किल्लते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम किम भवद्विपिने हरिणी दृशः कथयः नाथ कथम मत मन्यसे। किंतु इस सीता निर्वासन के राम के जीवन की महता तथा अलौकिकता का दर्शन होता है। कर्तव्य पालन का इससे उच्च आदर्श क्या होगा। यह सत्य है कि राम एक पति भी थे, उन्हें आदर्श पति होना चाहिए था, किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वे एक राजा थे, आदर्श राजा, जो दो कर्तव्यों अथवा आदर्शों में संघर्ष होने पर बड़े आदर्श के लिए छोटे आदर्श का परित्याग करना ही पड़ता है। राम सीता निर्वासन रूप में निशंस कर्म के लिए आजीवन अपने आप को धिकारते रहे, कोसते रहे, दुख का असह्य वेग उनके हृदय को दलता रहा, उनके भीतर धधकता हुआ शोकानल उन्हें निरंतर जलाता रहा, फिर भी धैर्य पूर्वक वे यह सब सहन करते रहे, क्योंकि राम के भीतर तो दुख संवेदन के लिए ही चैतन्य स्थापित था। महाकवि ने सत्य ही कहा है कि व्रजादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुर्महसि महति। राम विनय के साक्षात विग्रह थे, अभिमान का भाव उनका स्पर्श भी न कर सका था। चित्र दर्शन के अवसर पर परशुराम विषयक अपनी वीरता की प्रशंसा को वे सुनना तक नहीं चाहते थे, अतः लक्ष्मण को बीच में ही रोककर उन्होंने दूसरी ओर मोड़ा था। यही कारण है कि सीता स्वयं राम के इस विनय महात्म्य की प्रशंसा करते हुए कही थी कि सुष्ठु सो भसे आर्य पुत्र एतेन विनय महात्मेन। राम की क्षमाशीलता तथा उदारता भी ध्यान देने योग्य है। लक्ष्मण के द्वारा कह कही तथा मंथरा के चित्र की ओर निर्देश किए जाने पर वे झिटती उस वृतांत की तरह से सीता का ध्यान हटाकर दूसरी ओर ले जाते हैं। इस पर लक्ष्मण की यह स्वागत उक्ति कितनी भावपूर्ण है, अये मध्यमावृता वृतांत्र मंतरी तमारीण। लवणासुर के द्वारा प्रजापीड़न की बात कर ज्ञात कर वे तुरंत उसके विनाश के लिए शत्रुघ्न को मथुरा की ओर भेजते हैं तथा स्वयं सम्मुख वध के लिए प्रस्थान करते हैं। इससे प्रजाहित के कार्य में राम की तत्परता सूचित होती है। प्रथम दो अंकों में राम के सभी सद्गुणों की झांकी हमें प्राप्त होती है और आगे के अंक उस झांकी का पोषण करते हैं। राम कर्तव्य पालन में कठोर होते हुए भी कोमल तथा संवेदनशील स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। पंचवटी में पूर्व परिचित प्रदेशों को देखकर सीता का स्मरण कर उनका अनेक बार मूर्छित होना उनके हृदय की कोमलता को सूचित करता है। युद्ध क्षेत्र में कुश और लव को देखकर उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। संक्षेप में महाकवि भवभूति के राम एक आदर्श व्यक्ति है। वस्तुतः राम तो राम ही है जैसे है।
ख सीता। सीता नाटक की मुग्धा नायिका है। वे भारतीय परिवेश में पली हुई एक आदर्श ललना है। वे सती शिरोमणि है। उनके नाम के लेते ही हृदय में पवित्र भावों का संचार होने लगता है। सीता का जीवन तपस्या का जीवन है। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में सीता के निर्वासन की जो घटना प्रस्तुत की है वह हृदय द्रावक है, पत्थर के कलेजे को भी टुकड़े टुकड़े कर देने वाली है। सीता के हृदय में राम के प्रति श्रद्धा और सम्मान की जो सरिता प्रवाहित होती है, जो पूज्य भाव का महासागर उद्वेलित होता है, उसका दर्शन प्रथम अंक में ही प्रेक्षावानों को प्राप्त होता है। उनका यह कथन है कि अच्छा, उनके ऊपर नाराज होंगी यदि उन्हें देखकर अपने आप को बस में रख सकी तो। भवतु अस्मै कोपयिष्यामि यदि तम प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि। कितना मार्मिक है, इसे तो कोई सुहृदय व्यक्ति ही जान सकता है। इसमें राम के प्रति उनका अगाध प्रेम और आदर्श भाव कितना महान था, इनकी एक पवित्र झांकी देखने को मिलती है। सीता के ये गुण तृतीय अंक में और भी अधिक स्पष्ट होकर सामने आते हैं। वासंती सीता निर्वासन के लिए जब राम को दोष देती है, तब अदृश्य बनी हुई सीता अपने प्राणनाथ राम की इस निंदा को सहन नहीं कर पाती और वासंती के प्रति त्वमेव सखी वासंती दारुणा कठोरा यैवं प्रलपन्तं प्रलापयसि, अर्थात सखी वासंती तुम्हें निष्ठुर और कठोर हो जो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्य पुत्र को और रुला रही हो। यह कहकर राम के प्रति प्रेम तथा आदर को प्रकट करती है। अपने अकारण निष्कासन के लिए सीता के हृदय में राम के प्रति कुछ क्षोभ अवश्य है, जो उनके दृष्टया अपरिहीन राजधर्म सराजा इस कथन से सूचित होता है। किंतु प्रभात चंद्र की भांति पांडु तथा परीक्षाम राम को देखते ही वह मूर्छित हो जाती है। इसके अनंतर तपसा के द्वारा पांडुक्षाय तथा शोक से दुर्बल राम की अवस्था की ओर निर्देश किए जाने पर सीता अस्त्रदाह के अंतराल में क्षण भर राम का दर्शन करके अपना नया जन्म मानती है। राम के प्रति सीता के इस अगाध तथा सहज प्रेम का कुछ निर्देश भवभूति ने वाल्मीकि में के इस श्लोक द्वारा किया गया है। तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्यो अपि प्रियो अभवत् हृदयं त्वैव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्। उत्तर रामचरित की सीता त्याग तपस्या और करुण रस की साक्षात मूर्ति प्रतीत होती है। उनका कृश गात्र, असंकृत बिखरा हुआ केश, परीक्षाम दुर्बल मुखमंडल देखते ही दर्शक रो पड़ते हैं, रोने के लिए विवश हो जाता है। वाल्मीकि परिचय। महर्षि वाल्मीकि का परिचय हमें सर्वप्रथम द्वितीय अंक में आत्रेयी से प्राप्त होता है। ये पुराण ब्रह्मवादी महर्षि हैं। इन्हें प्राचेतस के नाम से भी जाना जाता है। मुनि लोग इनके पास ब्रह्म परायण के लिए आया करते हैं। ये लौकिक छंदों के आदि कवि हैं। इन्होंने शब्द ब्रह्म के विवर्त रामायण नामक इतिहास की रचना की है, जिसमें रामचरित का पावन वर्णन है। इन्हीं महर्षि को गंगा देवी ने लाकर सीता के पुत्रों को उस समय समर्पित किया था जब उन्होंने माँ का दूध पीना छोड़ा था। महर्षि ने बालकों का धातृकर्म, आचार्य कृत पालन पोषण और सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ ही की थी। इन्हीं महर्षि ने सीता निर्वासन के बाद के कथा भाग को आर्ष दृष्टि से देखकर दृश्य प्रबंध का रूप देकर राम और उनकी सारी प्रजाओं के समक्ष अभिनय करवाया था। इसी के फलस्वरूप उन्होंने सीता के पवित्र चरण को सबके सामने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार कथा वस्तु के विकास में और नाटक को सुखांत बनाने में भगवान वाल्मीकि का महान योगदान रहा। फिर भी वे केवल नाटक के अवसान पर ही रंगमंच पर आते हैं। नंबर घ, चंद्रकेतु परिचय। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु हैं। अश्वमेघ के प्रसंग में छोड़े गए यश की रक्षा के लिए सेना नियुक्त थी। उनके नायक राजकुमार चंद्रकेतु ही थे। चंद्रकेतु सूर्यवंशी क्षत्रिय की भांति सूरवीर हैं। दूसरों के प्रति उनका व्यवहार अति शिष्टता पूर्ण है। दूसरों के गुणों का आदर करना वे भली भांति जानते हैं। बालक होने पर भी वे छात्र तेज से लबालब भरे हुए हैं। युद्ध विद्या में विशारद हैं। यही कारण है कि महाराज राम ने अश्वरक्षा का भार उसके प्रपुष्ट कंधों पर समारोपित किया है। लव को एकाकी ही अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करते देखकर चंद्रकेतु उस शिशु केसरी की प्रशंसा करता हुआ तृप्त नहीं होता है। वीर लव के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए ही वह अपने रथ के नीचे उतर जाता है। वह रथारूढ़ उतरने की बात कही जाने पर वह उनसे भी आग्रह करता है, तरहि महाभागो अप्यन्यम रथमंगलम करोतु, अर्थात तो अत्यंतम सौभाग्यशाली आप भी दूसरे रथ को अलंकृत करें, अर्थात दूसरे रथ पर सवार हों। चंद्रकेतु के इस कथन में कितनी शालीनता है यह कोई भी सरलता से देख सकता है। अपने ज्येष्ठ तात रामचंद्र के प्रति चंद्रकेतु के हृदय में श्रद्धा का सागर लहरा रहा है। जिस समय लव राम के प्रति आक्षेप करता है उस समय चंद्रकेतु की कोप ज्वाला भभक उठती है और वह लव से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाता है। राम के युद्ध क्षेत्र में आने पर चंद्रकेतु बड़ी ही उदारता के साथ राम से लव का परिचय कराता है। उस समय वह उसे अपना प्रिय वयस्य कहकर संबोधन करता है। इससे उसके हृदय की उदारता तथा निर्मत्सरता स्पष्ट सूचित होती है। नंबर ग, लव तथा कुश परिचय। लव तथा कुश यमज भाई हैं, यानी जुड़वा। कुश बड़े हैं और लव छोटे। ये दोनों ही अपने पिता राम के समान ही गुणों से परिपूर्ण है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया है। ये क्षत्रियोचित संस्कार करके संपूर्ण विद्याएं प्रदान की है। इन दोनों कुमारों में भी क्षत्रियोचित गुण अपनी पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं। लव सरल तथा निर्दोष शिशु है। महाराज जनक को इस शिशु में सीता तथा राम की आकृति कांति वाणी विनय और अनुभव दृष्टिगोचर होता है। पंचम अंक में हमें लव की अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करना होता है। लव अपने भोलेपन के कारण राम की वीरता को भी अपनी वीरता से अधिक ऊंचा स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। वह दर्प एवं वीरता की साक्षात मूर्ति मालूम पड़ता है। सृजनता भी लव में कूट कूट कर भरी हुई है। गुरुजनों के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव है। कुश लव का बड़ा भाई है। उसे ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं रचित संदर्भ के साथ भरत मुनि के पास भेजा था। वहां से लौटते ही जब राज सैनिकों के साथ अपने प्रिय बंधु लघु के युद्ध की बात सुनता है तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रहती है। रघुवंशियों के साथ युद्ध को वह अपने धनुष पर परम सौभाग्य समझता है। वह दत्तेन्द्राभय छदक्षिणे इत्यादि में अपनी वीरता की घोषणा करता है। कुश के रोम रोम में वीर रस टपकता है। राम प्रथम दृष्टि पड़ते ही उसकी वीरता का आकलन इस दृष्टि में करते हैं। दृष्टि स्त्रीकृत जगत त्रय सत्वसारा धीरोदत्ता नमयतीव गतिर्धरित्रिम कौमार्यके अपि गिरीवल गुरुताम दधानो वीरो रसः किमयम् मेत्युत्तर्पयेव, अर्थात इसकी दृष्टि त्रिलोकी की शक्ति के उत्कर्ष को तृण की भांति तिरस्कृत कर रही है। इसकी धीर और गर्वयुक्त गति पृथ्वी को मानो झुका रही है। बाल्यावस्था में भी पर्वत के सदृश गौरव को धारण किए हुए क्या यह वीर रस है अथवा साक्षात गर्व ही आ रहा है। लव के समान ही उसके हृदय में भी राम के प्रति परम आदर तथा श्रद्धा का भाव है। राम के प्रसादिक रूप तथा पावन अनुभव देखकर कुश उनके चरणों में श्रद्धावनत हो जाता है। महाराज राम जब उसका आलिंगन करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो वे अमृत रस के सागर में गोते लगा रहे हैं हो। रामाशंकर त्रिपाठी। नाटकीय पात्र परिचय। पुरुष पात्र। सूत्रधार प्रधान नट, नटह सूत्रधार का सहायक। रामचंद्र अयोध्याधिपति सूर्यवंशीय राजा। लक्ष्मण सुमित्रा पुत्र राम के लघु बंधु। शत्रुघ्न सुमित्रा के छोटे पुत्र लक्ष्मण के अनुज। जनक मिथिला के राजा और राम के ससुर। अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े अंगों वाले एक महामुनि। वाल्मीकि रामायण के निर्माता महर्षि कुशलव के संरक्षक। सौधातकि वाल्मीकि के शिष्य। दंडायन वाल्मीकि के शिष्य। कुशलव राम के पुत्र वाल्मीकि के शिष्य। चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र। सुमंत्र चंद्रकेतु का वृद्ध सारथी। विद्याधर एक विशेष देवजाति। कंचुकी अंतःपुर में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। दुर्मुख राम का गुप्तचर। शंबुक शूद्र तपस्वी। मुनि कुमार और सैनिक आदि। स्त्री पात्र सीता देवी जनक तनया राम की पत्नी और नाटक की नायिका। वासंती वन देवता सीता की सखी। आत्रेयी ब्राह्मण जाति की एक ब्राह्मणचारिणी। तमसा एक नदी की अधिष्ठात्री देवी। मुरली एक नदी की अधिष्ठात्री देवी। गोदावरी एक नदी की अधिष्ठात्री देवी। भगीरथी गंगा देवी। कौशल्या राम की माता। पृथ्वी सीता की जननी। अरुंधति वशिष्ठ की धर्मपत्नी। विद्याधरी विद्याधर की पत्नी। प्रतिहारी अंतःपुर की द्वारपालिका। अन्य उल्लिखित पात्र वशिष्ठ एक महर्षि रघुकुल के कुलगुरु। श्रीष्य श्रृंग शांता के पति राम के जीजा। लवण एक राक्षस मथुरा का राजा। शांता राम की बहन ऋष्यशृंग की पत्नी।